الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ المعارج کی تفسیر اس کلاس میں ہماری چل رہی ہے. اس میں ہم نے آخری دفعہ جو ترجمہ کر لیا تھا وہ تو آیت نمبر 21 تک تھا, ٹھیک ہے, 19, 20, 21 یہ جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے پڑھ لیا تھا نا. اب ہم ان کے معارف و مسائل جو تھوڑے رہ گئے تھے وہ پڑھ رہے ہیں پیج 556 سے فی الحال, ٹھیک ہے. تو اس میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان خلق حلوعا, حلو لفظی معنی حریص, بے صبر, کم ہمت آدمی کے ہیں. حلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حریص. حریص کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر حرص ہو, بہت ہی لالچ ہو, طمع ہو, رائٹ, اسی کو حریص کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو حریص انسان ہوتا ہے نا, یہ بہت بے صبر بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو فوراً چیز چاہیے ہوتی ہے. لالچی انسان جو ہوتا ہے, جس چیز کو بھی دیکھتا ہے تو اس چیز کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, لیکن یہ بہت جلدی اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے بے صبرہ بھی ہوتا ہے اور کم ہمت بھی ہوتا ہے. کم ہمت کیسے ہوگا کہ یہ یعنی چاہے گا تو بہت زیادہ کہ مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے, لیکن کوئی خود سے محنت نہیں کرنا چاہے گا, ٹھیک ہے, محنت نہیں کرنا چاہے گا. بس دل کے اندر اس کے ہر وقت یہ لالچ اور تمنا رہے گی کہ مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے, لیکن محنت نہیں کرے گا. تو اس وجہ سے یہ شخص جو ہے وہ کم ہمت بھی ہوتا ہے, کیونکہ محنت کرنے کے لیے تو ہمت چاہیے ہوتی ہے نا. تو یہ سارے معنی آتے ہیں حلوع کے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں حلوع سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو. یعنی حرام مال, یا حرام مال سے مراد صرف درہم اور دینار یا ڈالر اور روپے نہیں ہوتے, بلکہ حرام مال سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں, بلکہ مال سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں نا, اگر حرام مال یعنی جو حرام چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کے اندر مراد ہوں گی, ٹھیک ہے. حرام مال بھی اور حرام مال سے جو چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ بھی مراد ہوں گی. تو یہ شخص جو ہے نا ان کی حرص میں مبتلا رہتا ہے. اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے. بخیل آدمی بھی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے لیکن اس مال کو وہ بچا بچا کے رکھتا ہے, خرچ نہیں کرتا. حلال جگہوں پر جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر یہ خرچ نہیں کرتا. تو یہ بھی حرص کی ہی ایک شکل ہوئی نا, کیونکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مال سے جدا نہ ہو یا مال اس سے جدا نہ ہو. مقاتل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تنگ دل بے صبر آدمی یہاں پر مراد ہے, چھوٹے دل والا اور بے صبر آدمی مراد ہے. اور یہ سب معنی متقارب ہے. متقارب کا مطلب کہ یہ سارے معنی نا ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں, کوئی بہت دور دور کے معنی نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ بہت ہی مختلف معنی ہے اور دوسرا بہت مختلف معنی ہے, بلکہ سب کا ہی تقریباً ایک ہی مفہوم بنتا ہے. جیسے کہ ہم نے حریص, بے صبر اور کم ہمت, یہ تین الگ الگ الفاظ ہیں لیکن تینوں کو ہم نے آپ کو جوڑ کے سمجھا ہے نا کہ تینوں کا ایک دوسرے سے یعنی آپس میں جوڑ بنتا ہے. حلو کے مفہوم میں سب داخل ہیں. اس حلو کی تشریح خود قرآن کے الفاظ میں آ رہی ہے, ठीक है। अब अगली जो दो आयतें हैं ना, उसमें अल्लाह ताला हुलू की मजीद तशरीह भी फरमा रहे हैं। अब एक इल्मी इश्काल जो इंसान के जहन में पैदा हो सकता है, उसका जवाब दे रहे हैं कि यहाँ ये शुबा ना किया जाए कि जब उसको पैदा ही इस हाल में किया है और ये ऐब उसकी तख्लीक में रखे हैं, तो फिर उसका क्या कसूर हुआ, वो मुजरिम क्यों करार दिया गया। ठीक है, देखिए जो आलिम होता है या जहीन इंसान, राइट, वो हमेशा चीज़ों की वजूहात को सोचता है। ठीक है, वो चीज़ों की गहराई में जाता है, बातों की गहराई में जाता है। तो इन्होंने कितनी गहरी बात करी है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को ऐसा पैदा किया है, तो अगर वो इस पैदाइशी ऐब की वजह से कोई बुरा काम कर रहा है या कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ऐब अल्लाह ताला ने डाल दिया है, तो भाई उसको किस बात की सजा मिलेगी, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना इसके अंदर, सही। लेकिन ऐसा जाहिरी तौर पर लग रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि भाई वजह यह है कि मुराद इससे इंसानी फितरत और जिबिल्लत में रखी हुई इस्तेदाद और मादा है। ठीक है, यानी एक इस्तेदाद अल्लाह ताला ने हर बंदे के अंदर पैदा की है मुख्तलिफ चीज़ों की। सो इसमें हक ताला ने हर खैर व सलाह का मादा और इस्तेदाद भी रखी हुई है और शर व फसाद की भी। ठीक है, अल्लाह ताला ने दोनों चीजों की इस्तेदाद के साथ इंसान को पैदा किया है। वहदैनाहुन नजदैन, राइट। एक और सूरत में जो 30वें पारे की कौन सी सूरत है वो, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि कौन सी सूरत है, सूरतुल लैल नहीं, सूरतुल बलद में ना, हाँ, अलम नजअल लहु ऐनैन, क्या हमने नहीं दी इसको दो आँखें, व लिसान व शफतैन, और एक जुबान और दो होंठ, व हदैनाहु नजदैन, और हमने इसको दोनों रास्तों की हिदायत दे दी। दोनों रास्तों, नजदैन कहते हैं दो रास्ते, और दो रास्ते भी कैसे हैं, जो कि नशेब में जाने वाले रास्ते होते हैं, नशेब यानी गहराई में जाने वाले, घाटी की तरफ जाने वाले रास्ते। ठीक है, तो ये दो रास्ते हैं, दोनों रास्ते जो है ना वो स्लोप हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने इन दोनों रास्तों की हिदायत दे करके इंसान को पैदा किया। हिदायत दे करके क्या मतलब है यहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ ये है कि दोनों रास्तों की बुनियादी इस्तेदाद दे करके पैदा किया है अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो दो आंखों की बात हो रही है, मैं सूरह बलद की चंद आयतों की बात कर रहा हूँ इस वक्त, राइट, कि जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि हमने दो आंखें दी, दो होंठ दिए और एक जुबान दी, तो ये सब क्या है, होंठ, आंखें और जुबान, ये इंसान की बुनियादी तख्लीक है, राइट। ये कोई इंसान बड़ा होकर के बिल्ड तो नहीं करता ना, आंखें अपने अंदर पैदा तो नहीं करता और होंठ और जुबान पैदा तो नहीं करता, ये तो अल्लाह ताला ने बुनियाद दे दी है। अब इन आंखों को इंसान अपने इख्तियार से इस्तेमाल करता है, बात समझ में आ रही है, आंखें दे करके अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने आंखों को फोर्स नहीं किया कि तुम हलाल की तरफ देखो, या फोर्स नहीं किया कि तुम हराम की तरफ देखो, ये तो इंसान अपने इख्तियार से करता है। ठीक है ना, कि अपनी अपनी अल्लाह ताला की दी हुई आंखों को वो हलाल चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करे या हराम चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल करे। ठीक है, उसी तरीके से जुबान अल्लाह ताला ने दे करके पैदा किया इंसान को, लेकिन इस जुबान को अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करे या बुरी बातों के लिए इस्तेमाल करें, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर चौथी चीज जिसका जिक्र हो रहा है वो क्या, कि अल्लाह ताला ने दो रास्तों की इस्तेदाद पैदा करके इंसान को इस दुनिया में भेजा है। खैर का भी काम कर सकता है, खैर का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है और शर का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। इसके सामने रुकावट नहीं है कि ये खैर का रास्ता इख्तियार न कर सके, ये शर का रास्ता इख्तियार न कर सके, दोनों का रास्ता इख्तियार कर सकता है। ये इस्तेदाद दे करके भेजा है, जैसे देखने की इस्तेदाद दे करके भेजा है, बोलने की इस्तेदाद दे करके भेजा है। इस्तेदाद का मतलब आता है ना सबको, राइट, पोटेंशियल या एबिलिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से दोनों रास्तों पे चलने की इस्तेदार दे करके भेजा है, लेकिन ये अपने इख्तियार से इन दोनों में से किसी एक रास्ते को इख्तियार करता है, ठीक है, जब मेच्योर हो जाता है तो। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सूरह बलद के अंदर अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो फरमाया है ना कि इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, के इंसान को अल्लाह ताला ने कम हिम्मत और बेहिर्स और हरीस और बेसब्र पैदा किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये सब्र कर ही नहीं सकता, अब ये यानी लालच को अपने अंदर से खत्म कर ही नहीं सकता, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सिर्फ यही मतलब है कि इसके अंदर इन चीजों की भी इस्तेदाद दी है अल्लाह ताला ने, ठीक है। जिस तरह सबर की इस्तेदाद दे के पैदा किया है, उसी तरह बेसब्री की भी इस्तेदाद दे करके पैदा किया है। इस इस्तेदाद को हम आसान अल्फाज में बीज से भी समझ सकते हैं, बीज, ठीक है, कि जैसे किसी किसान को आप एक दे दें गेहूं का बीज, दूसरा दे दें आप बाजरे का बीज, ठीक है, बाजरा का भी तो बीज होता है और गेहूं का भी बीज होता है, या आपने दोनों किसान को दे दिए, ठीक है, अब किसान का इख्तियार है कि वो कौन से वाले बीज को नरम जमीन के अंदर बोए, ठीक है, ये इख्तियार किसान के पास है। अब किसान अगर गेहूं के बीज को अच्छे से नरम जमीन के अंदर बोए और उसको पानी डाले और उसका ख्याल रखे, तो कौन सा पौधा उगेगा? बाजरे का पौधा तो नहीं उगेगा ना, फिर तो गंदम का पौधा उगेगा। उसी तरह से वो किसान अगर बाजरे को भी के बीज को जमीन के अंदर बो दे और उसको पानी देना शुरू कर दे, तो बाजरे का बीज उगेगा, ठीक है। तो देने वाले ने तो दोनों बीज दिए थे ना, लेकिन इसने अपने इख्तियार से पसंद किया कि मैं कौन सा वाला बीज जमीन के अंदर बोऊं। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को सब्र का भी बीज दे करके इस दुनिया में भेजा है और बेसब्री का बीज दे करके भी इस दुनिया में भेजा है। अब जिस बीज को ये नर्चर करता है, नरिश करता है, वही बीज इसके अंदर फिर फल फूल निकालता है। तो फरमाया कि जो इसमें हक ताला ने हर खैर व सलाह का मादा और इस्तेदाद भी रखी है और शर व फसाद की भी, राइट। फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने शर और फसाद की इस्तेदाद रखी ही नहीं है, ठीक है ना, फरिश्तों में शर और फसाद की इस्तेदाद रखी ही नहीं है, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ खैर की इस्तेदाद रखी है, ठीक है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों इस्तेदादों के साथ दुनिया में पैदा किया है। अगर अल्लाह ताला सिर्फ शर की इस्तेदाद के साथ पैदा करते तो फिर इम्तिहान क्या होता फिर इंसान का? शरी शर होता खाली, राइट। और इंसान को अगर अल्लाह ताला सिर्फ खैर की इस्तेदाद के साथ पैदा कर देते, शर की इस्तेदाद नहीं रखते, तो फिर फरिश्तों में और इंसानों में फर्क क्या होता? क्या जरूरत ही क्या थी इंसानों के पैदा करने की? फरिश्ते काफी नहीं थे? इतने फरिश्ते हैं कि हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। जब बारिश होती है तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बारिश का हर कतरा एक फरिश्ता लेकर के उतरता है। अब तसव्वुर तो करें ना कि जब 5 मिनट की एक बारिश हुई किसी छोटे से इलाके में, 5 मिनट की बारिश हुई खाली, बल्कि 1 मिनट की बारिश हुई, जरा तसव्वुर करें कितने कतरे उसमें उतरते होंगे, ठीक है, काउंटेबल नहीं है वो। 1 मिनट की बारिश में जितने कतरे आसमान से जमीन पर उतरते हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हिसाब नहीं कर सकते, राइट। हर कतरा एक फरिश्ता लेकर के उतरा है, तो कितने फरिश्ते होंगे? और जो घंटों की बारिशें होती हैं, तो उन बारिशों में कितने कतरे उतरते होंगे और कितने फरिश्ते उस एक बारिश में इन्वॉल्व होते होंगे? तो क्या फरिश्तों की कोई कमी थी कि कुछ और फरिश्ते पैदा कर देते और उनका नाम इंसान रख देते, राइट? नहीं, इंसान तो पैदा ही अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि दोनों इस्तेदादें, मैंने एक मखलूक ऐसी पैदा करनी है जिसके अंदर दोनों इस्तेदादें मौजूद हों, ठीक है। तो इंसान तो बना ही उस वक्त ना, यानी इंसान की तो की क्या लफ्ज, मुझे उर्दू का और कोई लफ्ज समझ में नहीं आ रहा, तुक तुक कहते हैं ना, ये तुक क्या बनती है इस बात की? तो भाई इसी तरीके से इंसान की तुक ही उस वक्त बनती है जब दोनों इस्तेदादें उसके अंदर मौजूद हों। तो इसको अक्ल होश भी अता फरमाया और अपनी किताबों और रसूलों के जरिए हर एक काम का अंजाम भी बतला दिया, ठीक है, कि अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा दुनिया में ये अंजाम होगा और आखिरत में ये अंजाम होगा, और बुरा करोगे तो दुनिया में अंजाम होगा और आखिरत में ये अंजाम होगा। ये भी अल्लाह ताला ने साथ साथ नॉलेज पहुंचा दी इंसान तक। तो अपने इख्तियार से मादा शर व फसाद की परवरिश की, अपने इख्तियारी अमाल को उस रुख पर डाल दिया, तो वो मुजरिम इन इख्तियारी अमाल की वजह से करार पाया। जो मादा उसकी पैदाइश में वदियत किया गया था, इसकी वजह से उसको मुजरिम नहीं करार दिया। ठीक है कि तुम तो पैदाइशी मुजरिम हो, नहीं, पैदाइशी मुजरिम कोई नहीं होता। मादा का होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मुजरिम बन गए, बल्कि मुजरिम तो आप उस वक्त बनेंगे जब आप इस वाले मादे को उस वाले मादे यानी खैर वाले मादे को छोड़ करके इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर इसको प्रेफर करेंगे, तो फिर आप मुजरिम बन जाएंगे। जैसा कि आगे हलू के मानी की तशरीह खुद कुरान मजीद ने की है, इन्हें सिर्फ अफ़ाल इख्तियारिया का जिक्र फरमाया है, वो ये हैं, इनमें सिर्फ अफ़ाल इख्तियार यानी अगली जो दो आयतें हैं ना, उनमें अफ़ाल इख्तियारिया जो अफ़ाल ये अपने इख्तियार से करता है वो क्या है, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहु खैरु मनुआ। ठीक है कि जब उसको शर मस करता है, मस मीन्स टच करता है, तो ये जज़ुआ हो जाता है। अब जज़ुआ की तारीफ आगे पढ़ लेंगे। और जब इसको खैर टच करता है तो ये मनुआ हो जाता है। ठीक है, क्या यानी इस इंसान की कम हिम्मती और बेसब्री का ये आलम है कि जब उसको कोई तकलीफ और मुसीबत पेश आ जाती है तो सब्र से काम नहीं लेता, और जब कोई राहत तो आराम और मालो दौलत मिल जाता है तो उसमें बुखल करता है। मनुआ का मतलब बुखल करता है। यहाँ बेसब्री और जजा से मुराद वो है जो हुदूद शरा से बाहर हो। ठीक है, यानी जब उसको कोई तकलीफ पहुंचती है ना तो आंसू बहा लेना उसके ऊपर, ये मुराद नहीं है यहाँ पर। इसकी बुराई बयान नहीं की जा रही कि आंसू क्यों बहाता है, नहीं, या फिर जुबान से अगर वो अफसोस या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है या कुछ इस तरह की और बातें करता है, हाय अफसोस मेरा वो रिश्तेदार मर गया, ठीक है, और इस तरह की दो चार छोटी छोटी इस तरह की बातें कर लेता है ना, तो वो शरी हदूद के अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस बात की मलामत की जा रही है वो बातें जो शरी हदूद से बाहर होती हैं, जैसे कि यानी औरतों के लिए आता है कि यानी अपने पर्दे को फाड़ना शुरू कर दिया, अपनी चादर को फाड़ना शुरू कर दिया और बालों को जो है नोचना शुरू कर दिया, सर को पीटना शुरू कर दिया, या ये कि औरत और मर्द दोनों जुबान से जो है वो बुरे बुरे कलमात निकालना शुरू हो जाएं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, और क्या मैं ही एक रह गया हूँ, क्या हमारा ये घर रह गया है कि जिसमें ऐसी मुसीबत आती है, इस तरह की बातें शुरू कर दें, ये हुदूद शरा से बाहर बातें होती हैं। इसी तरह बुखल से मुराद यानी जब उसको खैर मिलती है तो बुखल करता है, तो बुखल से क्या मुराद है, फराइज व वाजिबात की अदायगी में कोताही है। ठीक है, कमा मर्रा, जैसे कि पहले भी बात ये हो चुकी है। आगे आम इंसानों की इस खसलत मस्कूरा से मोमिनीन सालिहीन को मुस्तस्ना किया गया है, क्योंकि इल्लल मुसल्लीन फरमा दिया ना, तो इल्ला जो अरबी जुबान में लफ्ज होता है वो इस्तिस्ना के लिए होता है, एक्सेप्शन, ठीक है, एग्जेम्प्ट करने के लिए किसी को। तो आगे फिर एग्जेम्प्शन बयान करी कि ये इल्ला अल मुसल्लीन जो हकीकत में सही मानों में नमाज पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, जिनकी आगे तफसील आ रही है, ये ऐसा नहीं करते, ये अपने जो खर की इस्तेदाद सॉरी जो सॉरी खैर की जो इस्तेदाद अल्लाह ताला ने रखी है, ये खैर की इस्तेदाद को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो हलुआ बल्कि जो जजुआ और मनुआ लोग होते हैं, ये शर की इस्तेदाद को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इल्ल मुसल्लीन को की तफसील आगे पढ़ने से पहले हम आयत का तर्जुमा, इसलिए हम तर्जुमा साथ साथ कर रहे हैं और खुलासा तफसील, और फिर उसके बाद मारूफ मसाइल पर वापस आते हैं। तो पेज 550 के ऊपर आयत नंबर 22, इल्लल मुसल्लीन मगर वो नमाजी। ठीक है, यहाँ पर अल मुसल्लीन के बाद फुल स्टॉप नहीं है कि सिवाय नमाज पढ़ने वाले, यानी जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं ना वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, नहीं, ये बात नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें तो फिर हम भी सारे के सारे आ जाए। ठीक है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तो कम से कम पढ़ते हैं ना। ठीक है, तो अगर इतना सा होता इल्ल मुसल्लीन तो फिर इससे क्या मतलब निकलता कि हम में से कोई भी जो है ये दो गलतियां नहीं करता क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ताला ने अल मुसल्लीन को फर्दर डिस्क्राइब किया कि किन मुसल्लीन की बात हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर तर्जुमा भी ऐसे ही है, वो नमाजी, हर नमाजी नहीं, वो नमाजी, अल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों पर कायम होते हैं, दवाम के साथ कायम होते हैं, और अल्लदीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम, ठीक है, और जिनके हुकूक और जिनके अमवाल के अंदर मालूम हक होता है, ठीक है, प्री डिटरमिंड या वेल डिटरमिंड हिस्से होते हैं, किसके लिए, लिस्साइल, सवाल करने वाले के लिए, सवारी के लिए, ठीक है, यानी जो उनसे आके मांगता है उसको साइल कहते हैं, तो सवारी के लिए, वल महरूम, और महरूम के लिए, कौन महरूम, महरूम की आगे अच्छी खासी तारीफ है जो कि इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे, वल्लदीना युसद्दिकून बियौमिद्दीन, और जो यकीन करते हैं इंसाफ के दिन पर, यौमुद्दीन यानी जिस दिन हिसाब किताब होगा, और जो जितना डिजर्व करता है उतना उसको मिलेगा, ठीक है, देखें अल मुसल्लीन की कितनी सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है यहाँ पर, अल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, वल्लदीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूम, लिस्साइली वल महरूम, वल्लदीन युसद्दिकून बियौमिद्दीन, ठीक है, ये नमाजियों की फर्दर यानी डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं, मजीद वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबे रब्बिहिम मुशफिकून, और जो अपने रब के अजाब से डरते हैं, अशफका युशफिकु इशफाकन फहुआ मुशफिकुन, डरने वाले, मुशफिकून, अपने रब के अजाब से डरते हैं, और डरने का मतलब क्या होता है कि जिस वजह से अजाब मिलता है उन वजूहात से अपने आप को दूर रखते हैं, सिर्फ डरने का मतलब ये नहीं कि सुन सुन करके जो है वो मुंडी हिलाते रहते हैं, कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा मुंडी हिलाते हैं, अपनी सर हिलाते रहते हैं, ठीक है, नहीं, सर हिलाना यहाँ पर मुराद नहीं है, ठीक है, या ये कि हाय वावेला करना मुराद नहीं है, बल्कि मुराद क्या है कि डरने का मतलब कि भाई वो काम नहीं करते हैं जिन जिनकी वजह से अजाब होता है, इन अजाबा रब्बिहिम गैरु मामून, बेशक उनके रब के अजाब से किसी को मामून नहीं अपने आप को समझना चाहिए, मामून का मतलब जो कि अमन में हो, ठीक है, तो इसका तर्जुमा कैसे क्या, किसी को निडर ना होना चाहिए, ठीक है, अल्लाह ताला के अजाब से, क्योंकि ये अजाब ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि कोई बात नहीं मैं सह लूंगा अल्लाह का अजाब, कोई भी नहीं सह सकता अल्लाह ताला का अजाब, चाहे दुनिया का क्यों ना हो, हम दुनिया का अजाब भी नहीं सह सकते, और जहन्नुम का अजाब तो वाला अजाबुल आखिरत अकबर अकबर, वो तो दुनिया के अजाब से भी ज्यादा बड़ा अजाब है, वल्लज़ीनहुम लिफुरूजहिम हाफिज़ून, और जो अपनी शहवत की जगह को थामते हैं यानी हिफाजत करते हैं, फुरूज फर्ज की जमा, शहवत की जगह की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजहिम, सिवाय अपने अज़वाज से यानी जौज से, जिसको अंग्रेजी में स्पाउस से ट्रांसलेट कर सकते हैं, औ मा मलकत अईमानुहुम, या उनसे के जिनके इनके जिनको इनके हाथ पोजेस करते हैं, दाहिने हाथ पोजेस करते हैं, या दोज हुम देयर राइट हैंड्स पोजेस, ठीक है, यानी यहाँ पर गुलाम और बांदी मुराद है, ठीक है, एक्चुअली मर्द गुलाम नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ फीमेल गुलाम जिसको बांदी कहते हैं वो मुराद है, फइन्नहुम गैरु मलूमीन, बस उन पर कुछ मलामत नहीं है, ठीक है, बस इनके लिए गैरु मलूमीन यानी ये जो लोग होते हैं ना जो कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत अपनी अफवाह अपनी अजवाज से नहीं करते और अपने बांदियों से नहीं करते, तो इस हिफाजत ना करने के ऊपर इन पर कोई मलामत नहीं है, गैरु मलूमीन, ये मलामत किए जाने वाले लोग नहीं है कि क्यों अपनी बीवी के साथ तुमने क्यों वक्त गुजारा, बांदी के साथ क्यों वक्त गुजारा, इस तरह से कोई इनके ऊपर मलामत नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इसकी इजाजत दी है, फमन फमनिब तगा वरा अदालिका फउलाइका हुमुल आदून, फिर जो कोई ढूंढे इसके सिवाय सो वही हैं हद से बढ़ने वाले, फमन पस जो इब्तगा बगावत करे वरा अदालिका इसके आगे, ठीक है, यानी जितनी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है उस इजाजत से आगे बढ़ जाए, ठीक है, हद से आगे बढ़ जाए, जिसकी इजाजत नहीं दी थी। अब इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, बहुत तफसीर हो सकती है, लेकिन इस क्लास में उतनी तफसीर हम नहीं कर सकते। तो जो यानी जो अल्लाह ताला ने प्रिविलेजेस दी हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिविलेजेस, आपको जो आसाइशें या आसानियां दी हैं इनको प्रिविलेजेस कहते हैं। इन प्रिविलेजेस को अब्यूज नहीं करते, अब्यूज नहीं करते, बल्कि यूज करते हैं। यूज करने का मतलब होता है जायज हुदूद के अंदर उनको इस्तेमाल करते हैं, जिसके अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, ठीक है, लेकिन नाजायज हद तक नहीं पहुंचते, बल्कि जायज हुदूद को क्रॉस करके नाजायज में दाखिल नहीं होते। नाजायज में दाखिल होने को कहा जाएगा अब्यूज करना, ठीक है। तो ये लोग मतलब फरमाया कि जो भी इन प्रिविलेजेस को अब्यूज करता है, फउलाइका हुमुल आदून, वो हद से बढ़ जाने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो अजवाज वाली जो बात है, इसके बारे में अल्लाह ताला ने 3 आयात, बल्कि अजवाज नहीं, जो कि यानी शहवत की हिफाजत और शर्मगाहों की हिफाजत वाली बात है, इसके बारे में 3 आयात में बात करी। बाकी जितनी बातें थीं उनको एक एक आयत के अंदर निपटा दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 आयात इसके ऊपर लगाई। फिर उसके बाद अगली बात फरमा रहे हैं अमानतों के बारे में, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राउन, के वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने कौल को निभाते हैं, यानी अपने जो उन्होंने अहद किए हुए हैं किसी के साथ, तो उन अहदों को निभाते हैं, ठीक है। तो ये सब किसकी बातें हो रही हैं, किसकी तफसीरात बयान की जा रही हैं, नमाजियों की। देखें बाकी तफसील तो बाद में पढ़ेंगे, अभी एक दिल में बात आई तो आप आपसे कर देते हैं कि जब कोई इंसान दीनदार बनता है, ठीक है ना, पहले दुनियादार था। 31 आयात, फिर से 31, 31वीं आयत की फिर से तर्जुमा। तो तर्जुमा इसका इस तरह बनता है कि अच्छा दोबारा आपको जो बताएं तो चलें एक और तरीके से, एक मिनट, थोड़ा सा तफसीर से क्या उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इसके ऊपर। हाँ फमन, बस जो इब्तगा बगावत करता है, वरा अजालिका, वरा कहते हैं यानी पीछे, ठीक है, या ऊपर, क्या मतलब कि जो अल्लाह ताला ने ना एक एक शरी हुदूद, एक एक गोया के एक सर्कल बनाया है, ठीक है, कि भाई आप इस सर्कल के अंदर जो है ना रहेंगे तो हलाल कहलाएगा ये, यानी आपका अमल जो है वो हलाल कहलाएगा अगर आप इस बाउंड्रीज के अंदर रहेंगे। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग इस बाउंड्रीज से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं या पीछे जाने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब कि इन बाउंड्रीज से, इन हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, वो अल्लाह ताला के नजदीक आदून कहलाते हैं, आदून लोग होते हैं। आदून लोग मतलब इसका वही है कि हद से बाहर निकलने वाले लोग, ठीक है, और हद से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने फिर सजा रखी हुई है। तो अब आगे मारूफ हमसान में देख लीजिएगा, थोड़ी सी और इसकी तफसील अगर होगी इसमें तो वो कहेंगे भाई कैसे हद से बाहर निकलते हैं। अच्छा, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राउन, कि जो लोग अपनी अमानतों और अपने कौल को निभाते हैं। तो बात आपसे मैं ये करने वाला था कि अल मुसल्लीन की डिस्क्रिप्शंस बयान हो रही है ना, तो हम जो दुनियादार जिंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है, यानी दुनियादार जिंदगी की तारीफ क्या होती है कि नमाजें या तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं या पाबंदी से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और यानी म्यूजिक, डांसिंग और जो फिल्में और नाच गाना और जो मखलूत महफिलें, ठीक है, यानी औरतों मर्दों के दरमियान कोई पर्दा वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो जो लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, राइट, उनको क्या कहते हैं, दुनियादार कहते हैं, ये दुनियादार लोग हैं। जब ये बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में ये हलाल हराम की चीज की तमीज नहीं करते हैं, ठीक है। सूद के ऊपर आराम से कर्जा ले लेते हैं, सूद के ऊपर आराम से कर्जा दे देते हैं, यानी किसी को कर्जा देते हैं और उससे बगैर किसी फिक्र के सूद चार्ज करते हैं, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें जो शरीयत की तालीमात हैं उन शरीयत की तालीमात का पता ही नहीं करते कि भाई शरीयत में जायज भी है इस तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन करना कि नहीं। फॉर एग्जांपल सट्टे का कारोबार, राइट। हमारे यहाँ मार्केट्स के अंदर कितना ज्यादा सट्टे का कारोबार होता है, यानी जुआबाजी हो रही होती है, सट्टेबाजी हो रही होती है, ठीक है। वो दांव पे लगा देते हैं अपनी पता नहीं किस किस चीज को कि भाई अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं फलानी चीज जो है वो आपको ला के दे दूंगा, ठीक है। अभी मुझे हमारे एक रिश्तेदार है, उन्होंने बताया कि हमारे उनके मोहल्ले के अंदर कितने सारे नौजवान जो हैं वो ताश खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, डब्बू एक और गेम होता है फुटबॉल टाइप का, जो यानी जो हाथ से फुटबॉल खेलते हैं तो वो गेम होता है, वो खेलते रहते हैं और वो अपने दुकानें जो हैं वो जुए पे लगा देते, वो लगा देते हैं इसके ऊपर ना कि अगर मैं इस गेम को हार गया ना तो मैं अपनी दुकान जो है वो तुम्हें दे दूंगा। तो इस तरीके से फिर वो बाकायदा अपनी अपने कारोबार से महरूम हो जाते हैं सिर्फ इस सट्टे की वजह से, इस जुएबाजी की वजह से, ठीक है। उसी तरीके से आप थोड़ा सा और कल्चर्ड हो जाएं, थोड़ा सा और पढ़े लिखे हो जाएं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर चले जाएं। स्टॉक मार्केट के अंदर कितना सारा कारोबार जो है वो बिल्कुल जुए के ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। उसको भी सट्टा ही कहते हैं, स्टॉक मार्केट का सट्टा कहते हैं। तो ये एक दुनियादार इंसान की पहचान होती है कि वो कैसी जिंदगी गुजार रहा होता है, ठीक है। शराब भी जिन इलाकों में आम होती है वहां पर शराब भी पी रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंसान दीनदार बनता है तो दीनदार बनने की सबसे पहली पहचान क्या होती है कि ये शख्स पाबंदी से नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। जो भी पाबंदी से नमाज पढ़ना शुरू कर देता है ना तो वो दीनदारी की डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। ये शख्स दीनदार कहलाना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ नमाज पढ़ने को दीन अपनी महबूबियत की अलामत नहीं करार दे रहे, ठीक है। कि जो खास लोग होते हैं ना, मेरे मेरे खास बंदे होते हैं, ये सिर्फ वो नहीं होते जो कि बस नमाज पढ़ लेते हैं, बल्कि इनको उससे आगे भी जाना होता है कि जो नमाजों पे यानी दवाम इख्तियार करते हैं, और दवाम की तारीफ भी आगे आ रही है जो हम पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह। और ये अपने अपने अम्वाल के अंदर से नेक जगहों पे खर्च भी करते हैं, और ये यौमे दीन का यकीन भी रखते हैं, यानी आखिरत इनके सामने हर वक्त मुस्तहजर रहती है, और ये अपने रब के अजाब से डरते भी रहते हैं, यानी गुनाहों से बचते हैं और अजाब से डर डर करके, ठीक है। और ये अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी इस किस्म के गुनाहों में बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नमाजें भी पढ़ रहे हैं और घर में आकर के जो है वो फिल्में भी देख रहे हैं और अपने फोन के ऊपर जो है वो यानी बदनजरी भी कर रहे हैं और साथ साथ नमाजें भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता इन लोगों के साथ। और ये अपनी अमानतों का ख्याल करते हैं, और ये तो हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि कितने ही ज्यादा दीनदार जिंदगी गुजार रहे हो लेकिन अमानत में खयानत तो कोई गुना समझा ही नहीं जाता ना, और उससे भी ज्यादा बढ़ करके कि वादे की पाबंदी। अमानत में खयानत तो फिर कुछ यानी कुछ लोगों के साथ ऐसा मामला होता है कि लोग उनके पास अमानत रखवाते हैं, ठीक है। तो अमानत में खयानत अक्सर लोगों से हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अमानतों का ख्याल करते हैं। हमारे यहाँ दीनदार जो जो माशरा है ना उसमें अमानतों का तो ख्याल फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन अहदहिम राउन वादे की पासदारी ये तो तस्वुर ही नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब ये हम सब भी इसके अंदर शामिल है, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक हमारे एक अंकल हुआ करते थे, वो बड़े मजे की बात कहते थे, वो कहते थे कि वो वादा ही कैसा जो पूरा कर दिया जाए, राइट। वो वादा ही कैसा जो पूरा हो जाए, यानी वादे का तो मतलब ही होता है कि आपने तोड़ना है इसको, वादा करके पूरा करना, ये तो गोया के वादा किया ही नहीं आपने, आपने तो पता नहीं क्या किया, ठीक है। शेयर का बिजनेस भी नाजायज है, किसी ने प्राइवेटली मैसेज किया है कि शेयर का बिजनेस जो है वो नाजायज है। नहीं, शेयर का बिजनेस नाजायज नहीं है, ठीक है, लेकिन उस बिजनेस को कुछ लोग नाजायज तरीके से करते हैं, ठीक है। कि भाई ये जो कंपनी है ना इसके शेयर्स मैं शर्त लगाता हूँ कि इसके शेयर्स जो है वो इतने दिनों में बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या पता कि बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, आपने कुछ स्पेकुलेशंस, इसको कहते हैं स्पेकुलेट करना, ठीक ठीक है, स्पेकुलेशंस की बुनियाद पर आपने कह दिया कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब अगले बंदे ने कहा नहीं, मैं कहता हूँ नहीं बढ़ेंगे, तो इसने कहा कि नहीं मैं कह रहा हूँ बढ़ जाएंगे, वो कहता है नहीं बढ़ेंगे, ये कहता है नहीं बढ़ जाएंगे, तो दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा तुम क्या गारंटी दे दो कि बढ़ जाएंगे, कहता है कि मैं जो हूँ वो शर्त लगा देता हूँ, इतने पैसे की शर्त लगाता हूँ कि ये शेयर जो है ना वो बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये शर्त जो इसने लगा दी है ना कि किसी फ्यूचर चीज के बारे में जो कि इसको पता नहीं है कैसा होगा, ठीक है, इसने शर्त लगा दी है, तो ये जो है जुआ हो गया, ठीक है। तो अब स्टॉक मार्केट के अंदर ये जुआ शामिल हो गया, ठीक है। लोग शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं कि फलाने के स्टॉक बढ़ जाएंगे, फलाने के स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो घट जाएंगी, अब उसके ऊपर शर्तें लगा देते हैं, तो ये हराम है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है स्टॉक मार्केट के अंदर हराम होने की दूसरी वजह ये बनती है, एक तो ये सट्टाबाजी हो गई जिसकी वजह से शेयर मार्केट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो हराम हो गया अगर आप सट्टाबाजी कर रहे हैं तो। दूसरी ये होती है कि जिन कंपनीज के शेयर आपने खरीदे वो कंपनीज क्या हलाल कारोबार करती हैं कि हराम कारोबार करती हैं, अगर वो हराम कारोबार करती हैं तो उनके शेयर्स को खरीदना और आगे बेचना ये जायज नहीं है, ये हराम है, ठीक है। मिसाल के तौर कोई शराब की कंपनी है, ठीक है, या बैंक है, कोई सूदी बैंक, इस्लामी बैंक नहीं सूदी बैंक, अब सूदी बैंक के जो आपने शेयर्स खरीदे हैं तो ये आपके लिए हराम है, इसको आप आगे सेल ऑफ और बाय एंड सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो शेयर मार्केट के अंदर इस तरीके से दो मेन रीजंस होती हैं कि जिनकी वजह से हराम शामिल हो जाता है। बहरहाल लेकिन ये हराम जो है सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता, ये तो बाहर जो नॉर्मल मार्केट्स होती हैं उनके अंदर भी इसी तरह की हरकतें हो रही होती हैं। वल्लदीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे हैं, काइम हैं, खड़े रहते हैं अपनी गवाहियों पर, ठीक है, यानी किसी के धोस धमकी की वजह से या रिश्वत वगैरह की वजह से अपनी गवाहियों को वापस नहीं ले लेते, अगर उन्होंने कोई गलत काम होता हुआ देखा है और कोर्ट में जाकर के उसकी गवाही दे रहे हैं तो अब लोग डराएंगे धमकाएंगे कि अगर तुमने गवाही दी ना तो तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हें हम पकड़ लेंगे, तुम्हें जो है वो हम अगवा कर लेंगे, तुम्हारे बच्चे को अगवा कर लेंगे। हमारे मुल्क में क्या सब कुछ होता है, ये सारी चीजें इस्लामी मुमलिकत है पाकिस्तान के अंदर, राइट, बच्चे को अगवा कर लेंगे और तुम्हें जो है वो हम मार देंगे, कत्ल भी करना कोई मसला थोड़ी है, राइट, कत्ल कर देंगे हम तुम्हें, ठीक है। किसी ने, मैं जब जॉब किया करता था पाकिस्तान में एक कंपनी में, तो एक साहब बताने लगे अपने हाल कि भाई वो उनको कहा जा रहा था गलत काम करने के लिए, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं गलत काम नहीं करूंगा, तो उनको कहा गया कि अगर नहीं करोगे ना तो मार देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, मार लो। तो उन्होंने आगे से दूसरे बंदे ने क्या जवाब दिया जो उनको धमकियां दे रहा था, उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि हाँ जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब तकलीफ होती है ना तो बड़ा, यानी जब जब यानी जब टॉर्चर किया जाता है ना तो तकलीफ बहुत होती है, ठीक है, यानी ये आगे से जवाब क्या दे रहा है कि बेशक जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हम तुम्हें ना सिर्फ मारेंगे नहीं, हम तुम्हें अजियत भी देंगे, हम तुम्हें टॉर्चर भी करेंगे और फिर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना यानी धमकियां दी जाती हैं जो किसी गलत काम से अपने आप को रोकता है या जिसको जो है वो गलत काम के खिलाफ कोई गवाही देनी होती है, इस तरीके से रोका जा रहा होता है इसको, ठीक है। अब इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है तो क्या ये तकलीफ पहुंचाना और तकलीफ से बचाना ये अल्लाह के हाथ में नहीं है, राइट, सिर्फ जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, तो तकलीफ भी तो अल्लाह ही के हाथ में है ना और तकलीफ से बचाना भी तो अल्लाह ही के हाथ में है ना। बहरहाल जो ऐसे लोग होते हैं उनको तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो वो इस तरह की बातें कर जाते हैं। कल जो है वो किसी जगह खबर पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर जो आजकल एक बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हुआ था पिछले साल, इसकी बड़ी रिपोर्टें आई थी कि जी पाकिस्तानी लड़कियों को पकड़ पकड़ करके जो है ना वो जो बराबर का मुल्क है जहाँ से पैसे आते हैं, ऊपर वाला जो मुल्क है ना जिधर से पैसे आते हैं हमें, तो वहाँ पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा स्कैंडल पाकिस्तान में आया था, तो अब ये जो पाकिस्तानी लड़कियों को, और वो ज्यादातर जो है वो शायद ईसाई लड़कियां हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, जिनको के उनके चाइनीज हस्बैंड्स के हाथों जो बेचा जा रहा है ना, तो अब जो है वो उसके खिलाफ किसी ने केस बनाया, कोर्ट के अंदर केस किया, ठीक है, तो अब उस केस की सारी प्रोसीडिंग्स को जो है ना वो रोक दिया गया है, ठीक है। क्यों रोक दिया गया है, क्योंकि अगर उस मुल्क के लोगों के खिलाफ जो है वो कोई काम किया जाएगा ना तो पैसे आने बंद हो जाएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो जाएगी, ठीक है ना, और हमारी जिंदगी जो है वो तंग हो जाएगी, तो इस वजह से ना उस वो सारा कारोबार चल रहा है, पहले के मुकाबले में ज्यादा चल रहा है, बढ़ रहा है बल्कि, ठीक है, लेकिन कोर्ट से उसकी हियरिंग नहीं हो रही है, और जितने लोग उसके अंदर गवाही देने के लिए खड़े हुए थे ना, उनको डरा धमका करके या रिश्वत दे दे करके उनको चुप करा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ तो बहुत होता है, सही है। तो भाई जाहिर है, अल्लाह ताला से जब मुंह मोड़ेंगे और कुरान को जो है वो यानी आखिरी प्रायोरिटी अपनी जिंदगी में देंगे, तो उसके बाद फिर यही सब कुछ होगा ना मुआशरे के अंदर। एनीवेज, तो फरमाया कि ये अपनी गवाहियों पर सीधे रहते हैं, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, और वो लोग जो कि अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। ठीक है, ये बात शुरू भी जो है मुसल्लीन से हुई थी और यहाँ पर ख़त्म भी, यानी इन लोगों की जो डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, इन लोगों की डिस्क्रिप्शन ख़त्म भी किस पर हो रही है? नमाज के ऊपर ख़त्म हो रही है। ठीक है, कि अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। फिर इनकी जजा की का जो तस्करा है वो उसके बाद शुरू होता है, उलाइका फी जन्नात मुकरमून, कि ये लोग जन यानी इज्जत वाले इकराम वाली जन्नतों में रहेंगे। ठीक है, दुनिया में इनको जन्नतें मिले या ना मिले, दुनिया में इनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हो या ना हो, लेकिन मर जाएंगे, जल्द मर जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे और फिर मैं उनको इकराम के साथ अपनी जन्नत में दाखिल करूंगा। ठीक है, तो दुनिया की वजह से नेकियां ना करो, दुनिया की वजह से गुनाहों से ना बचो, बल्कि आखिरत की वजह से गुनाहों से बचो, आखिरत की वजह से नेकियां करो। ठीक है, और वहां पर अल्लाह ताला यकीनन जरूर बिल जरूर जन्नात मुकरमून अता फरमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसकी हम खुलासे तफसीर से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 553 के ऊपर के मगर वो नमाजी, ये चौथी लाइन है, मगर वो नमाजी, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट जरूरी काम करके आता हूँ, प्लीज रिकॉर्डिंग को पॉज कर देंगे। तो फरमाया कि मगर वो नमाजी यानी मोमिन इन मूजिबात अजाब से मुस्तस्ना है। ठीक है, तो यहाँ पर ईमान वाले मुराद हैं, और जहाँ पर कुरान जब ईमान वालों का तذکرہ करता है ना, तो मुराद कामिल मोमिन होते हैं। ठीक है, हमारी तरह के नाकिस मोमिन नहीं बल्कि कामिल मोमिन। तो ये फरमा रहे हैं कि यानी मोमिन इन मूजिबात अजाब से मुस्तस्ना है, एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, यानी मूजिबात अजाब क्या थे? जो बातें अजाब को वाजिब करती हैं उनको मूजिबात अजाब कहते हैं, अजाब वाजिब करने वाली। और अजाब वाजिब करने वाली कौन सी बातें थी जो अल्लाह ताला ने बताई थी? कोई अगर आप में से बता दे, अजाब वाजिब करने वाली कौन सी बातें अल्लाह ताला ने इससे पहले बताई थी? जिनसे एग्जेम्प्ट किया जा रहा है ईमान वालों को। कौन सी खसलतें थी कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला का अजाब आता है, उनका जिक्र किया था ना, और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि इल्ला अल मुसल्लीन, सिवाय मुसल्लीन के उनके ऊपर ये अजाब नहीं आएगा, क्योंकि वो ये मूजिबात अजाब नहीं करते। रीड, अब वो आयत को देख करके उसका बता देना। मूजिबात अजाब तो फिर बहुत सारे हैं, हम सबकी तो बात नहीं कर रहे हैं, हम तो खाली उनकी बात कर रहे हैं जिनको के इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने बताया था, बयान किया था। इल्ला मुसल्लीन वाली आयत से पहले कौन सी दो आयतें? इजा मस्सहु शर्रु जजुआ व इजा मस्सहुल खैरु मनुआ। ठीक है, तो जजुआ एंड मनुआ ये दो मूजिबात अजाब अल्लाह ताला ने बयान किए थे। ठीक है, जजुआ का मतलब बेसब्रा। ठीक है, जब उसको शर पहुंचता है तो वो बेसब्री का मुजाहरा करता है, तो बेसब्रा होना ये मूजिबात अजाब नंबर वन हुआ। व इजा मस्सहुल खैरु मनुआ, कि जब उसको खैर पहुंचती है तो ये यानी शुक्र अदा नहीं करता। ठीक है, बेतौफीका तर्जुमा किया था उसका। तो मनुआ जो है वो मुजिबात अजाब नंबर टू 2 अल्लाह ताला ने बयान किया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है मुजिबात अजाब हैं। तो इन मुजिबात अजाब से मुस्तस्ना लोग कौन होते हैं? नमाजी जो अपनी नमाज पर बराबर तवज्जो रखते हैं, यानी नमाज में जाहिरन या बातिनन दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करते, जिसको कद अफलहल मुमिनून में खाशियून से ताबीर फरमाया है। यही जो अल्फाज आए ना यहाँ पे, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, यही अल्फाज तकरीबन सूरह मुमिनून के अंदर भी आए हैं। ठीक है, जो कद अफलहल मुमिनून वाली आयत से शुरू होती है, गालबन ये 26वें पारे के अंदर ये सूरत है, कद अफलहल मुमिनून। तो वहाँ पर भी ना नमाजियों की यही खासियतें बयान की गई थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि नमाज में जाहिरन या बातिनन दूसरी तरफ तवज्जो नहीं करते। ठीक है, जाहिरन तवज्जो करने का क्या मतलब है कि अपनी निगाहों को इधर उधर नहीं फिराते रहते, कि खड़े हुए नमाज में हैं और निगाहें जो है वो इधर उधर फिर रही हैं, या हाथ पैर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं, नमाज में खड़े हुए हैं लेकिन हाथ पैर मुस्तकिल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कभी किधर खुजा रहे हैं, कभी कहीं खुजा रहे हैं, कभी सर के बाल जो है वो सही कर रहे हैं, कभी जो है वो अपने कपड़े सही कर रहे हैं, अपने दामन को सही कर रहे हैं, कभी अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे हैं, राइट, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये ज़ाहिरन अपने आप को इन सारे अफ़ाल से रोक करके रखते हैं, बिल्कुल जैसे खड़ा होना चाहिए वैसे खड़े रहते हैं, जैसे रुकू करना चाहिए वैसे रुकू करते हैं। ठीक है, और बातिनन का मतलब क्या कि दिल की तवज्जो भी जो है वो नमाज ही की तरफ मरकूज करके रखते हैं, किसी बुरे ख्याल की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, किसी बुरे ख्याल की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। ठीक है, ये मतलब है जाहिरन या बातिनन नमाज पर तवज्जो करना। कजा नकला इबन कसीर अन उकबा बिन आमिर, इसका मतलब यह है कि जैसे कि हजरत इबन कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन से नकल किया है, बिकौली ही उनके कौल के मुताबिक, अद्दाइमु साकिनु व अनहु फिद्दुर्रिल मंसूर, के ये जो खाशऊन होते हैं ना नमाज के अंदर, खशियत रख्तियार करने वाले, ये कौन होते हैं? अद्दाइम अस्साकिन। ठीक है, यानी सुकून के साथ और दवाम के साथ नमाज पढ़ते हैं। दाइम मतलब दवाम के साथ, यानी कंसिस्टेंटली, और साकिन का मतलब बहुत सुकून के साथ, हरकतें करते हुए नमाज नहीं पढ़ते बल्कि सुकून के साथ नमाज पढ़ते हैं। वह अनहु फिद दुरुल मंसूर, और दुरुल मंसूर एक और हदीस की किताब है, उससे नकल किया कि इदा सल्लू लम यल्तफितु अन यमीनी वला शिमालिन, अनयमीनन वला शिमालिन, कि जब ये नमाज पढ़ते हैं ना तो ये इल्तिफात नहीं करते दाएं और बाएं तरफ। ठीक है, कि दाएं से कौन आ रहा है, अगर कोई गुजर रहा है तो उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, कोई भी चीज़ हिली तो उसकी तरफ देखना शुरू हो गए, ना दाएं की तरफ देखते हैं ना बाएं की तरफ देखते हैं, कहीं भी इल्तिफात नहीं करते। ठीक है, तो खाशीन की तारीफ में इन्होंने दो बातें लिखी कि ये अदाइम असाकिन होते हैं, और दूसरी ये कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो दाएं बाएं की तरफ इल्तिफात नहीं करते। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि जब हम नमाज में खड़े हो ना तो हम अपनी जो जाहिरी कैफियत है ये वैसी रखें कि जैसे नबी अलैहि सलाम ने बताई या सहाबा कराम ने बताई। ठीक है, नबी अलैहि सलाम ने बताई का क्या मतलब होता है कि जो सहाबा कराम ने उम्मत को सिखलाई। ठीक है, जैसे हाथ बांधना है वैसे हाथ बांध दें, जैसे रुकू करना है वैसे रुकू करें। ठीक है, मर्दों को जितना रुकू करना चाहिए उतना मर्द रुकू करें, औरतों को जितना जितना रुकू करना चाहिए उतना औरतें रुकू करें, मर्दों को जहां हाथ बांधना चाहिए वहां पे मर्द बांधें, औरतों को जहां हाथ बांधनी चाहिए वहां पर औरतें बांधें। ठीक है, ये एक बड़ा लंबा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि औरतों और मर्दों के दरमियान की नमाज के दरमियान फ़र्क है। ठीक है, जब आप अरब मुल्कों में आते जाते हैं ना तो यहाँ पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो पता लगता है कि नहीं जी यहाँ तो कोई औरतों मर्दों में इख्तलाफ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ भी औरतों मर्दों में इख्तलाफ है, औरतों और मर्दों में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन एक नई जो आइडियोलॉजी 20वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमोट की गई है ऑफिशियली, वो आइडियोलॉजी ये है कि आप हदीस की किताब पढ़ें और उस हदीस को जैसे आप खुद समझते हैं वैसे उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। तो जब ये आइडियोलॉजी पेट्रो डॉलर्स के जरिए से बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर फैलाई गई ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने उलमा से पूछना छोड़ दिया और उन्होंने हदीस की किताबें जो हैं वो खुद से पढ़ पढ़ करके समझने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो हदीस की किताबें जब पढ़नी शुरू करी तो एक हदीस सामने नजर आ गई उनको कि सल्लु कमा रही तो मुनी उसल्ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे तुम भी नमाज पढ़ो, ठीक है। तो अब ये हदीस क्या कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो वैसे ही तुम भी नमाज पढ़ो। तो अब मर्दों ने इस हदीस को पढ़ा तो उन्होंने कहा भी बिल्कुल ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़नी चाहिए। लेकिन जब औरतों ने इस हदीस को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज पढ़ते थे वैसे, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी और मर्दों के लिए हुक्म है या औरतों के लिए हुक्म है, तो इस वजह से औरतों की भी जो है वो वैसी नमाज पढ़नी चाहिए जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना ये आइडियोलॉजी बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि औरतों और मर्दों की नमाज में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो दीन है वो एक हदीस की बुनियाद पर नहीं समझा जा सकता, ठीक है। पूरा का पूरा दीन या दीन के का कोई एक अमल जो है वो सिर्फ एक हदीस की बुनियाद पर पूरा अमल जो है वो नहीं समझा जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं और सबसे बढ़कर ये कि उन हदीसों को जैसा सहाबा कराम ने समझा है ना वैसा हम आज 20वीं सदी में बैठ करके नहीं समझ सकते। तो सहाबा कराम का जो अमल था वो अमल हमारे लिए हुज्जत है, हदीस की किताबें हमारे लिए हुज्जत नहीं है, ठीक है। हदीस की किताबें हुज्जत नहीं होती, सहाबा कराम का अमल हुज्जत होता है कि उन्होंने हदीस को कैसे समझा है, ठीक है। तो उनकी समझ तो ये है कि औरतों और मर्द की जो नमाज होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, यानी बिल्कुल तो मुख्तलिफ नहीं होती लेकिन उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वजह से जैसा औरतों को अमल करना सिखाया गया है वैसा औरतों ने अमल करना है, जैसा मर्दों को अमल करना सिखाया गया है वैसा मर्दों ने अमल करना है, और इसी अमल करने को नमाज का खुशू और खुलू कहा जाता है। तो फरमाया कि जिनके मालों में सवाली और बेसवाली सब का हक है, ठीक है, वफी अमवालहिम हक्कुम मालूम, इसके मुतालिक मजमून सूरह जारियात में गुजर चुका है कि सवाली और बेसवाली से क्या मुराद है। तो इसकी तफसील सूरह जारियात में गुजर चुकी है। सूरह जारियात ये 27वें पारे की पहली सूरत है, ठीक है। तो वहां पर ये आयत सूरह जारियात में ये आयत है वफी अमवालहिम हक्कुन लिस्साइली वल महरूम, तकरीबन यही अल्फाज है, वफी अमवालहिम और उनके मालों के अंदर हक है साइल और महरूम के लिए। तो वहाँ पे जो तफसील है ना वो ये है कि साइल तो वो होता है जो कि आके आपसे मांगता है, उसके पास कमी होती है गुर्बत होती है वो आपसे आके सवाल करता है, और महरूम से वो लोग मुराद हैं कि जो कि अपने इज्जत नफ्स की वजह से अपनी गैरत की वजह से या अपने खानदानी जो उनका यानी जो जो उनका एक मेयार बना हुआ होता है उसकी वजह से इवन दो के उनके पास माल दौलत की कमी होती है और उनकी जरूरियात भी पूरी नहीं हो रही होती हैं लेकिन फिर भी वो किसी से सवाल नहीं करते हैं, जिनको हमारे मुआशरे में सफेद पोश लोग कहा जाता है। ये किसी से सवाल नहीं करते, किसी का दामन पकड़ करके ना झंझोड़ते नहीं है, किसी से मांगते नहीं है लेकिन इनकी जरूरियात नहीं पूरी हो रही होती है। तो यहाँ पर जिन ईमान वालों का तस्करा है ना ये लोग जो है इन लोगों को तलाश करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को, ऐसे सफेद पोश लोगों को तलाश करते हैं क्योंकि ये वैसे नजर नहीं आते, वैसे ये आम लोगों की तरह से लगते हैं, तो ये तलाश कर कर के फिर इनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो महरूम से यहाँ पर वो लोग मुराद हैं। तो ये जो मुसल्लीन है इल्लल मुसल्लीन जो कि जहन्नुम के मूजबात जहन्नुम से अपने आप की हिफाजत करने वाले होते हैं, तो ये लोग ये काम भी करते हैं कि दे सीक आउट पीपल हु आर इन नीड बट दे डोंट एस्क, उन लोगों को तलाश करके फिर उनकी जरूरियात भी पूरी करते हैं। आगे फरमाया कि वल्लज़ीना हुम युसद्दिकूना बियौमिद्दीन, वल्लज़ीना युसद्दिकूना बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून इन अज़ाब रब्बिहिम गैरु मामून, के जिनके और जो क़्यामत के दिन का एतक़ाद रखते हैं, एतक़ाद का मतलब यहाँ पर कि जिस पर यकीन रखते हैं, और जो अपने परवरदिगार के अजाब से डरने वाले हैं और वाकई उनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज नहीं है। ठीक है, क़यामत के दिन का यकीन रखना और अजाब से डरना। और फिर अजाब के बारे में एक जुमला और फरमा दिया कि अजाब जो है वो बेखौफ होने वाली चीज नहीं है। ये जुमला मुतरजा के तौर पर, मुतरजा का मतलब ये होता है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस जुमले की जरूरत नहीं थी, मजमून तो चल रहा था कि भाई ये लोग ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, तो अब बीच में ये जिक्र करने की क्या जरूरत थी कि इनके रब का अजाब निडर होने वाली चीज नहीं है। तो अरबी ग्रामर के हिसाब से ना ऐसे जुमले को जुमला मुतरजा कहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ ग्रामर के हिसाब से है, एक्चुअली तो अल्लाह ताला का एक एक जुमला बल्कि एक एक लफ्ज जो है वो हिकमत की वजह से अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो किसी भी जुमले के ऊपर हम कुरान के एतराज़ नहीं कर सकते कि अल्लाह ने ये बात क्यों कही, यहाँ तो कोई तुक नहीं बनती थी ये बात कहने की। ठीक है, तो इस वजह से ये जो जुमला मुतरजा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना यहाँ पर, ये सिर्फ ग्रामेटिकली इस्तेमाल किया है, ये नहीं कि हिकमत के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं अल्लाह ताला की। अच्छा, इसके बाद फरमाया इल्ला अला अज़वाजहिम वल्लज़ीना हुम फी लिफुरूजहिम हाफिज़ून, के जो अपनी शर्मगाहों को हराम से महफूज रखने वाले हैं लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी शरी लौंडियों से हिफाजत नहीं करते हैं। ठीक है, यानी बीवियां तो जो निकाह के जरिए से इंसान की के घर में आती हैं उनको बीवी कहते हैं। शरी लौंडियां कौन होती हैं? ये शरी लौंडियां जो हैं वो औरतें होती हैं कि जो के जब मुसलमानों का काफिरों के साथ कोई यानी झगड़ा लड़ाई होती है, जंग होती है, ठीक है, जिहाद होता है, तो जब मुसलमान उनके ऊपर गालिब आ जाते हैं तो उनके जो मर्द होते हैं जो जिंदा बच गए, जो जंग में मर गए वो तो मर गए, जो मर्द जिंदा बच गए ना उनको फिर गुलाम बना लिया जाता है। ठीक है, और जो औरतें उनकी होती हैं तो उन औरतों को बांदी बना लिया जाता है। ठीक है, उनको कत्ल नहीं कर दिया जाता, एक तरीका ये था कि भाई ये जो बच गए हैं ना इनको भी कत्ल कर दो ताकि ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेंगे तो कल को ये हमारे खिलाफ फिर मुहिम जुई करेंगे तो इनको कत्ल कर दो, ये दीन में नहीं है कि इनको कत्ल कर दो। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इनको जेलों में भर दें, पकड़ पकड़ करके जेलों में भर दें, तो भाई जेलों में जब आप भरेंगे तो आप कत्ल तो नहीं करना चाहते, आप उनको जिंदा रखना चाहते हैं ना, तो जेल में भर देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म तो नहीं हो जाएगी बल्कि आपको उन जेलों की मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, और इन कैदियों के जो है वो खाने पीने का और रिहाइश का और हर चीज का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि आप उनको कत्ल नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये इंसान है, इंसान को आपको ये सारी जरूरियात मुहैया करनी पड़ेंगी, तो ये जो सारी जरूरियात आप मुहैया करेंगे तो ये आपके ऊपर के खर्चा नहीं आएगा, आपको इसके जो है वो इंतहाई इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ये मुल्क के जो जो ट्रेजरी होती है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ होता है। ठीक है, प्रिजन्स का इंतजाम करना, तो दीन इस्लाम ने ये प्रिजन्स का कभी तरीका इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, जंगी कैदियों के लिए, बल्कि दीन इस्लाम ने ये तरीका इस्तेमाल किया है कि इनको जो है वो मुसलमानों के दरमियान बांट दिया जाए। ठीक है, गुलाम की शक्ल में मर्दों को बांट दिया जाए और बांदी की शक्ल में औरतों को बांट दिया जाए, और ये लोग जो है ना फिर मुसलमानों के साथ उनके घरों में रहें, उनकी खिदमत करें, और इसके बदले मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लगा दी कि मुसलमानों ने इनके हुकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इनके ऊपर बिल्कुल भी जुल्म नहीं करना है, और इनके साथ जो है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश आना है। ठीक है, और सो उसके बाद अगला भी ये भी फरमा दिया कि अगर मुसलमानों से कोई कोई गुनाह हो जाए, ठीक है, जैसे कि जिहार वाला एक गुनाह होता है, उसकी तफसील अभी भी वही मिसाल मेरे जहन में आ रही है, जिहार वाला गुनाह होता है, बल्कि जैसे कि रोजा तोड़ दिया, फर्ज रोजा था जो आपने तोड़ दिया, तो अब इसकी कफारा क्या है? गुलाम आजाद करना। ठीक है, तो ये गुलाम जो आपको दिए गए थे इस गुलाम को तुम आजाद कर दो, यानी एक नॉर्मल शहरी में तब्दील कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था कि ये गुलाम जब मुसलमानों के पास रहते थे ना, और वाकई और उस जमाने के मुसलमानों की बात हो रही है जो कि कामिल ईमान वाले होते थे, जो कि नेक मुसलमान होते थे, तो जब उनके सोहबत में ये गुलाम और बांदियां रहते थे तो ये उनके इखलाक से और इनकी पाकीजगी से मुतासर होकर के ये मुसलमान हो जाते थे। ठीक है, ये दीन इस्लाम कबूल कर लेते थे और फिर ये दीन इस्लाम में बहुत आगे बढ़ते थे। ये बेहतरीन निज़ाम था जिसकी वजह से कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हुए और इन लोगों की सलाहियतों से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उम्मत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो बहरहाल, तो ये जो शरी लौंडियाँ होती हैं तो इनकी भी जो हैसियत होती है वो तकरीबन बीवी की जैसी हैसियत होती है, तो इनसे जो है शर्मगाहों की हिफाजत की अल्लाह ताला ने पाबंदी नहीं लगाई है, तो इस वजह से इन पर इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ, जो इसके अलावा और जगह शहवत रानी का तलबगार हो, ऐसे लोग हद शरई से निकलने वाले हैं। ठीक है, यानी जो अल्लाह ताला ने यानी बीवियां और शरी लौंडियों की हद तक इजाज़त दी है, उसके अलावा अगर कोई और हराम का काम करते हैं तो उन लोगों को अल्लाह ताला सजा देंगे। ठीक है, अब इसकी बहुत सारी तफसीलात हो सकती हैं जो कि फिकह की किताबों के अंदर इंशाल्लाह आप पढ़ लेंगे या पढ़ चुके होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे इस क्लास का तो टाइम ख़त्म हो चुका है, तो बाकी जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे वेंसडे के दिन। तो यार, इसमें आप खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।